संस्कृत प्राकृत भाषा तंत्र तथा देशी भाषाएं। संस्कृत प्राकृत के भाषा तंत्र से जनपदीय भाषाओं का अंतर विरोध अखिल भारतीय है। संस्कृत के साथ साथ दक्षिण भारत में 18वीं सदी तक प्राकृत काव्यों की रचना होती रही। तेलुगु और प्राकृत के संबंधों पर के सीतारामैया ने लिखा है, इस प्रदेश के शासक कार्य में प्राकृत का उपयोग करते थे। राजकीय आदेश पत्र पृष्ठ संख्या 85, ताम्र पत्र, शिलालेख आदि में प्राकृत का प्रयोग होता था। यहाँ के नरेशों ने प्राकृत में लिखे गए साहित्य को प्रोत्साहित किया। आंध्र राजाओं के काल में सत्सई सप्तशती नामक पद्य संकलन प्राकृत में लिखे गए। तेलुगु साहित्य का इतिहास संपादक के लक्ष्मी रंजनम, हैदराबाद, 1967, पृष्ठ संख्या 23। आंध्र प्रदेश में प्राकृत के विशेष प्रभाव का कारण बताते हुए उन्होंने आगे लिखा है, ईसा से पहले इस प्रदेश में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार था। सामंत वर्ग ही नहीं, बहुसंख्यक जनता भी बौद्ध धर्म को मानती थी। बौद्धों के सभी ग्रंथ प्राकृत में थे। उनके विहारों में भी प्राकृत का उपयोग होता था। प्रवचन तथा दैनिक कार्यों में भी बौद्ध स्थविर यहाँ की प्रादेशिक भाषाओं की अपेक्षा प्राकृत का ही उपयोग करते थे। बौद्धों के इस प्रभाव के कारण तेलुगु का अधिक विकास न हो सका। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ब्राह्मण वैदिक धर्म के प्रचार के लिए संस्कृत का प्रयोग करते थे, इससे तेलुगु भाषा पनप न सकी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जब तक बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म का नाश न हो जाए तब तक तेलुगु जैसी भाषा साहित्य का माध्यम नहीं बन सकती। पर यह निष्कर्ष अवश्य निकलता है कि जहाँ का सामंत वर्ग अधिक शक्तिशाली तथा रूढ़िवादी था, वहाँ जातीय भाषा के माध्यम से जातीय साहित्य के विकास में अवश्य बाधा पड़ी। मलयालम साहित्य का इतिहास साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1968 के लेखक परमेश्वरन नायर ने बताया है कि केरल में ऐसे संस्कृत नाटकों का अभिनय होता था जिनमें विदूषक लोगों को हंसाने के लिए मलयालम भाषा का व्यवहार करता था। काव्य में मणि प्रवालम नाम से जिस शैली का चलन हुआ उसमें मलयालम की स्थिति उक्त पुड़ियाट्टम अभिनय शैली से अच्छी थी। मणि प्रवालम शैली में संस्कृत पद रचना के साथ मलयालम भाषा का व्यवहार भी होता था। इस शैली में अन्य भाषाओं में भी रचनाएं हुई, किंतु इसका व्यवहार सबसे अधिक केरल में हुआ और इसका कारण यह था कि एक प्रदेश में संस्कृत का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक था। संस्कृत के साथ केरल में प्राकृत का व्यवहार भी होता था। पंडितों ने जैसे व्याकरण पढ़कर संस्कृत सीखी थी, वैसे ही व्याकरण पढ़कर उन्होंने प्राकृत सीखी। इस तरह का अंतर विरोध उत्तर भारत में था। डॉक्टर सुकुमार सेन ने बंगला साहित्य के इतिहास में लिखा है कि रामायण की कथा मुसलमानों समेत बंगाल के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय थी। यह रामकथा बंगला भाषा या लौकिक रूपांतर में नहीं मिलती। उच्च वर्ग उसे संस्कृत में और प्राकृत में भी सुनना ज्यादा पसंद करते थे। पृष्ठ संख्या 86। इस विवरण से स्पष्ट है कि संस्कृत प्राकृत तंत्र से अधिक भारतीय स्तर पर जनपदीय भाषाएं टकरा रही थी। इस तंत्र के दबाव से मुक्त हुए बिना देशी भाषाओं में साहित्य रचना का कार्य संपन्न न हो सकता था। ये जनपदीय भाषाएं कितनी पुरानी थी, इनके अस्तित्व का उल्लेख कब से मिलता है? जिस समय साहित्य में संस्कृत और प्राकृत का व्यवहार होता था, उस समय इन दोनों से भिन्न देशी भाषाओं के अस्तित्व की सूचना भी पुराने साहित्य में निरंतर मिलती है। वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्वसंपादित कीर्तिलता की भूमिका में शिष्ट भाषा और लोकप भाषा के भेद का विवेचन करते हुए लिखा है, जैन साहित्य में तो कुछ बड़ी भाषाओं का और कई सौ खुल्लक भाषाओं का उल्लेख आता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में यह स्थिति वेद के समय से ही थी और आज तक चली आई। कीर्ति लता संपादक वासुदेव शरण अग्रवाल चिरगांव झांसी 1962 पृष्ठ संख्या 63-64। ये खुल्लक भाषाएं जनपदीय भाषाएं थी, वे प्राकृतों से भिन्न देशी भाषाएं थी। डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन ने प्राकृत साहित्य का इतिहास में बताया है कि कुवलय माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख है। उसके लेखक ने इन भाषाओं के कुछ शब्द भी दिए हैं। गोदावरी के आसपास रहने वाले लोग अड्डे बोलते थे, मगधवासी एगेले का प्रयोग करते थे। गंगा यमुना के बीच अंतर्वेद के निवासी कित्तो किम्मो बोलते थे। इसी प्रकार कीर देश के निवासी सरिपारी ढक देशवासी एहम तेहम सिंधु प्रदेश के लोग चौदय मरु प्रदेशवासी अप्पा तुप्पा गुर्जर देशवासी र उरे भल्लऊ लाटवासी अम्हम काउम तुम्हम मालवे के लोग भाऊए भैडी तुम्हें कर्नाटक वासी अड़ी पाड़ी मरे कोसल वासी जल तलले महाराष्ट्र के लोग दिल्लल्ले गहियल्ले आंध्रजन अटी पुटी रटी का प्रयोग करते थे। कुवलय माला के लेखक को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने देशी भाषाओं के अस्तित्व का विवरण दिया। इस विवरण में आर्य और द्रविड़ दोनों समुदायों की भाषाएं हैं। भाषाओं का इतिहास लिखने के लिए यह विवरण अवश्य पर्याप्त है, किंतु अवश्य अपर्याप्त है, किंतु उनके अस्तित्व की सूचना देने के लिए वह पर्याप्त है। इन भाषाओं के 2-4 शब्द जो उनके कानों में पड़े और जैसे वे उन्हें सुनाई पड़े और याद रहे, वैसे ही रूप में उन्होंने अपनी पुस्तक में उन्हें लिख दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भाषाएं प्राकृतों से भिन्न है और अपभ्रंश नहीं है। देश भाषा की चर्चा सबसे पहले किसने की, देश भाषाएं कितनी पुरानी है, इन प्रश्नों का विवरण यह जानने के लिए आवश्यक है कि संस्कृत प्राकृत के दबाव के कारण आर्य परिवार की जीवंत भाषाओं को साहित्य का माध्यम बनाने का काम कितनी शताब्दियों तक रुका है रहा। इस संदर्भ में डॉक्टर राम सिंह तोमर ने देसी भाषाओं को प्राकृतों से ही नहीं अपभ्रंश से भी अलगाते हुए लिखा है। पृष्ठ संख्या 87। भरत ने सर्वप्रथम कदाचित देश भाषा शब्द का प्रयोग किया है। विभिन्न देशों प्रांतों की बोलियों को उन्होंने देश भाषा कहा है। तरंगवती के संक्षिप्त कर्ता ने बताया है कि देशी वचनों की बहुलता के कारण कृति को सब लोग नहीं समझ सकते थे। देशी वचनों से तात्पर्य अप्रचलित शब्दों से प्रतीत होता है, अपभ्रंश से नहीं। कामसूत्र में 64 कलाओं में से देश भाषा विज्ञान को एक कला माना है। इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी भाषांतर तरज्ञ का उल्लेख मिलता है। दोनों का ही तात्पर्य देश विशेष की बोली से है, अपभ्रंश से नहीं हो सकता। विक्रमांक देवचरित में जन्म भाषा तथा कुवलय माला कथा में परिगणित 18 देशी भाषाओं के उल्लेख भी इसी प्रकार है। कथा सरित सागर बृहत कथा मंजरी कवि कंठाभरण आदि में भी देश भाषा तथा देश भाषा काव्य के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन समय से प्रदेश विशेष की बोलियों के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग मिलता है। देश भाषा से उनका तात्पर्य अपभ्रंश कदापि नहीं था। इन उल्लेखों के अतिरिक्त अपभ्रंश के कवियों ने अपभ्रंश को देश भाषा लोक में व्यवहित भाषा कहा है, लेकिन उससे उनका तात्पर्य किसी प्रांत विशेष की भाषा से नहीं है। मध्य युग में जिस प्रकार कवि अपनी भाषा को भाषा कहते थे, यथा कवि संस्कृत है कूप जल भाषा बहता नीर, तुलसी भाखा भड़ी मोरमती भोरी, केशव भाषा बोल न जाने जिनके कुल के दास रामचंद्र का, उसी प्रकार उन अपभ्रंश कवियों ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। क्षेमेंद्र ने देशों प्रदेशों में कुछ देशी शब्दों के प्रयोग किए हैं और वे अपभ्रंश के शब्द नहीं है। विशेष प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाले अप्रचलित शब्द हैं। हेमचंद्र ने भी देशी शब्द का लक्षण विशेष अर्थ में प्रचलित संस्कृत शब्द से न सिद्ध होने वाला दिया है। जो अपभ्रंश शब्दों संस्कृत के साधु शब्द रूपों के विकृत रूपों तद्भव के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता, इस संक्षिप्त विवेचन से स्वाभाविक निष्कर्ष यह निकलता है कि देशी भाषाएं अपभ्रंश से भिन्न प्रांतीय बोलियां थी और प्राचीन साहित्य में नाट्य शास्त्र काम सूत्र कौटिल्य शास्त्र इत्यादि इसी अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश तथा हिंदी के प्राचीन कवियों ने देश भाषा शब्द का प्रयोग अपभ्रंश या अपनी कविता की भाषा के लिए किया है। अपभ्रंश का उल्लेख छठी शताब्दी से मिलता है, भामा ने इसका उल्लेख किया था। देश भाषा का उल्लेख इससे बहुत पुराना है, उतना पुराना है जितना भारत का नाट्य शास्त्र। जिस समय शिलालेखों पर संस्कृत और प्राकृत का व्यवहार होता था, उस समय देशी भाषाएं विद्यमान थी। ये देशी भाषाएं प्राकृतों से भिन्न थी। प्राकृत काव्यों के रचनाकारों ने अपनी भाषा को देश भाषा नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि देश भाषाओं से प्राकृत उतनी ही दूर है जितनी दूर संस्कृत। पृष्ठ संख्या 88। दरअसल संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत देशी भाषाओं से कुछ अधिक ही दूर थी, क्योंकि संस्कृत के सैकड़ों सरल शब्द वन धरती पर्वत जल भूमि आदि ज्यों के त्यों लोक भाषाओं में प्रयुक्त होते थे, किंतु प्राकृतों में ऐसे अस्वाभाविक रूप थे कि संस्कृत में बदले बिना उन्हें पहचानना मुश्किल था। जिस समय प्राकृतों का व्यवहार हो रहा था, उस समय देशी भाषाओं का अस्तित्व था। इसका एक प्रमाण मध्य एशिया में प्राप्त खरोष्ठी लिपि वाले दस्तावेज हैं। इन्हें सर ऑरेल स्टाइन ने प्राप्त किया था और ये तीसरी शताब्दी में लिखे गए थे। बरो ने इन दस्तावेजों की भाषा का अध्ययन करते हुए एक पुस्तक लिखी थी, द लैंग्वेज ऑफ द खरोष्ठी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज तुर्किस्तान। इस भाषा को उन्होंने क्रोर इन नाम दिया है। सरलता के लिए इसे हम यहाँ खरोष्ठी प्राकृत कहेंगे। बरो के अनुसार इस प्राकृत का मूल प्रदेश उत्तर पश्चिमी भारत संभवतः पेशावर का क्षेत्र था। यह अन्य प्राकृतों से इस बात में भिन्न है कि इसका रूपतंत्र अन्य प्राकृतों से नहीं आधुनिक आर्य भाषाओं से मिलता जुलता है। मध्य एशिया के जिस क्षेत्र में इस भाषा का व्यवहार होता था, उसके निवासियों के प्रभाव से ऐसा हुआ हो यह नहीं कहा जा सकता। उन निवासियों के लिए यह एक नपीतुली सरकारी भाषा थी। उसमें जो परिवर्तन दिखाई देते हैं, वे भाषाओं के विकास क्रम में होने वाले सामान्य परिवर्तन हैं। वे ऐसे परिवर्तन हैं जो आगे चलकर आर्य भाषाओं में होते दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए इस खरोष्ठी प्राकृत में कर्ता और कर्म कारकों के भेद चिन्ह नहीं है। अपभ्रंश वाली मंजिल में आर्य भाषाओं के लिए यह सामान्य लक्षण हो गया। अन्य प्रपंच जो अपभ्रंश में भी दिखाई देते हैं, यद्यपि उतने भरे पूरे ढंग से नहीं, वे इस प्रकार हैं। सभी संज्ञा शब्दों को रूप विकार के लिए अवर्ग के अंतर्गत रखना, स्त्रीलिंग शब्दों के लिए सामान्यतः ई चिन्ह का प्रयोग, जाने भेजने आदि की क्रियाओं के साथ कर्म के बदले अधिकरण कारक का प्रयोग, अतीतकालीन कर्मवाच्य कृदंत से नए कर्तृवाच्य वर्तमान काल का निर्माण विशेष रोचक है। यह विकास अपभ्रंश में भी नहीं हुआ है, किंतु आधुनिक आर्य भाषाओं में सामान्य है। खरोष्ठी प्राकृत के इन लक्षणों की चर्चा करने के बाद बरोक एक महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। विकास की ये प्रवृत्तियाँ इस प्राकृत के क्षेत्र में विदेशी आक्रमण या प्रभाव के कारण असाधारण रूप से प्राचीन काल में उदित हुई, या वे भारत में ही अधिक व्यापक थी और साहित्यिक प्राकृतों की रूढ़िवादिता के कारण आंखों से ओझल रही थी। बरो कहते हैं, कालिदास ने जो प्राकृत लिखी वह उनके बाद शताब्दियों तक वैसी ही बनी रही, तो यह प्राकृत कालिदास के समय में ही कितनी पुरानी पड़ चुकी थी, कितनी कृत्रिम हो चुकी थी। जो भी हो, यह विचित्र बात है कि यह खरोष्ठी प्राकृत ध्वनि तंत्र की रक्षा में पृष्ठ संख्या 89 अत्यंत रूढ़िवादी है। इसके साथ ही रूप तंत्र में सबसे प्रगतिशील है। रूढ़ी और प्रगति के इस समन्वय का कारण यह है कि प्राकृतों की पहचान उनके ध्वनि तंत्र से होती थी, इसलिए उसकी सुरक्षा जरूरी थी। प्राकृत के मूल केंद्रों से दूर होने के कारण उसका व्यवहार करने वाला शासक वर्ग हर जगह किताबी व्याकरण का ध्यान न रख पाता था। वह सोचता था देशी भाषा में और लिखता था प्राकृत, इसलिए इस प्राकृत में अनचाहे ही देशी भाषा के बहुत से व्याकरण रूप आ गए। वैसे ही जैसे भारत के लोग अंग्रेजी लिखते हैं, तो देशी भाषा की कुछ विशेषताएं उनके अंग्रेजी में आ जाती है। बरो संस्कृत के बाद प्राकृतों को संस्कृत का सहज विकास मानते हैं। फिर भी यह तथ्य उनकी आंखों से ओझल नहीं होता कि साहित्य में लिखी जाने वाली प्राकृत कृत्रिम है और कालिदास की प्राकृत भी कृत्रिम थी। चीनी तुर्किस्तान में खरोष्ठी प्राकृत का व्यवहार राजकाज के लिए होता था। यद्यपि उसका व्यवहार करने वाले भारतीय बौद्ध थे, फिर भी वह धर्म और साहित्य से भिन्न स्तर पर भी काम में आती थी। इसीलिए इसके व्याकरण में साहित्यिक धार्मिक कृतियों की प्राकृत से कुछ अधिक स्वच्छंदता है। जो व्याकरण रूप यहाँ अन्य प्राकृतों से भिन्न दिखाई देते हैं, वे तीसरी शताब्दी में बोली जाने वाली देशी भाषाओं के रूप है और उनके अस्तित्व का प्रमाण है। इसके वाक्य तंत्र की विशेषताओं के बारे में बरो ने लिखा है कि करण और कर्ता कर्म कारकों का भेद अस्पष्ट होता जाता है। भूतकालीन कृदंत बदलकर कर्तृवाच्य भूतकाल बन जाता है। तेन दित है भूतकालीन कृदंत बदलकर कर्तृवाच्य भूतकाल बन जाता है। तेन दित उसके द्वारा दिया गया, इसे लोग समझने लगे कि कर्तृवाच्य उसके दिया के समान है। फिर करण कारक तेन के स्थान पर कर्ता रूप से का व्यवहार होने लगा। बरो कहते हैं, यह ठीक वही स्थिति है जो अनेक आधुनिक भाषाओं में घटित होती है। भूतकालीन कृदंत के आधार पर जो क्रिया रूप बनता है उसका कर्ता करण कारक में रखा जाता है, अथवा पुराने करण कारक के अनुरूप कारक में रखा जाता है। इसके साथ ही कर्ता कारक का व्यवहार अधिक बार होता है। करण कारक वाले प्रयोग संस्कृत के कर्मवाच्य प्रयोगों से मिलते हैं, किंतु बरो कहते हैं कि इन प्रयोगों का अनुवाद निस्संदेह कर्तृवाच्य रूप में होता है। कारण यह है कि अनेक आधुनिक भाषाओं में करण कारक कर्ता कारक में रूपांतरित होता है। बहुसंख्यक प्रयोगों में त प्रत्यय वाले भूतकालीन कृदंत के साथ कर्ता कारक का व्यवहार होता है, जहां कर्तृवाच्य प्रयोग ही संभव है, तथा प्रायः उन सभी प्रयोगों में जिन्हें निश्चित रूप से कर्मवाच्य कहा जा सकता है, कर्ता का भाव बताने के लिए संबंध कारक का प्रयोग होता है, न कि करण कारक का। कर्ता और कर्म में कारक चिन्ह भेद नहीं होता है, इसलिए कर्ता कर्म करण इन सब कारकों का भेद अस्पष्ट हो जाता है। खरोष्ठी प्राकृत के दस्तावेज तीसरी शताब्दी के हैं। इस भाषा का व्यवहार पृष्ठ संख्या 90 चीनी तुर्किस्तान में होता था। इस प्राकृत का विकास भारत के किसी प्रदेश में हुआ, चीनी तुर्किस्तान में पहुंचकर राजभाषा के रूप में स्थापित होने में उसे कुछ समय लगा होगा। यह कल्पना करना असंगत न होगा कि जिन देशी भाषाओं की विशेषताएं इस प्राकृत में परिलक्षित है, वे देशी भाषाएं ईसवी सन शुरू होने से पहले भारत के विभिन्न प्रदेशों में बोली जाती थी, उनमें साहित्य नहीं रचा गया। इसका कारण यह नहीं है कि अपभ्रंशों से अभी उनका जन्म न हुआ था। इसका कारण सामंती व्यवस्था की जकड़ और संस्कृति के संकुचित क्षेत्र पर संस्कृत प्राकृत का प्रभुत्व था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि प्राचीन काल में जब देशी भाषाओं के अस्तित्व की बात कही जाती है, तब उसका आशय यह नहीं है कि ये भाषाएं हूबहू आधुनिक भाषाओं जैसी शब्द भंडार और व्याकरण की विशेषताओं से लैस उस समय विद्यमान थी। आशय यह है कि मराठी, बंगला, हिंदी आदि भाषाओं के मूल तत्व, इनके व्याकरण की मूल विशेषताएं, इनके मूल शब्द भंडार की संपदा उस समय भी विद्यमान थी। प्रत्येक भाषा को बोलियों का एक समुदाय मानना चाहिए। इस समुदाय में से कुछ बोलियों के आधार पर जातीय भाषा के रूप में किसी एक बोली का विकास बाद की प्रक्रिया है, जब व्यापार, उद्योग, धंधों और संस्कृति के नए केंद्र स्थापित होते हैं। सामंतकालीन जनपदों का अलगाव दूर होता है और एक बृहत्तर क्षेत्र में जातीय भाषा का प्रसार होता है।